الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراه في ضلال مبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ان آیات کی جو ابھی تلاوت کی گئی سے لے کر کے، یعنی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 35 تک، اس کے ہم عارف مسائل پڑھ رہے تھے. عارف القرآن جلد نمبر 5 سے پیج نمبر 63 کے اوپر ہم تھے. اور آخری بات جو پڑھی تھی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اے میرے رب، اگر یعنی یہ جو سجن ہے، قید خانہ، یہ میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر آپ نے ان کی سازشوں کو، ان کی ترکیبوں کو مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جہلا میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو بالکل آخری بات یہی ہم نے پڑھی تھی کہ اس سے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کا کام جہالت سے ہوتا ہے، علم کا تقاضا گناہوں سے اجتناب ہے. یعنی جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے نا، وہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اور بے علمی میں جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے. اب یہاں پر بے علمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ غلطی سے گناہ کر لیا، بلکہ بے علمی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی، آپ نے جو فرض علم تھا، گناہوں کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. گناہوں کا علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ شراب کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اس قسم کی شرابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو یہ حرام ہے، شراب پینا حرام ہے تو اب میں شرابوں کا علم حاصل کروں، یا زنا کا علم حاصل کروں کہ اچھا بھائی زنا کیسے کیسے ہو سکتا ہے اور کیا کیا اس کے ذریعے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کی جگہیں ہوتی ہیں، میں ان کا علم حاصل کروں. گناہوں کا علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کا علم حاصل کرنے کا مطلب یا مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کا علم حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو پتہ ہے نا کہ میں نماز پڑھنی ہے تب فرض ہے نا نماز پڑھنا، پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے. کوئی انسان ساری زندگی گزار دے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ نماز پڑھنی تھی، تو اس نے تو لا علمی میں نماز نہیں پڑھی، تو کیا وہ بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے؟ رائٹ، نہیں، وہ ہرگز نہیں بچے گا. اس لیے کہ نماز کے بارے میں پتہ کرنا، یہ خود، یہ علم حاصل کرنا خود فرض تھا، اور اس نے فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ علم حاصل کرنے والا فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ آج صبح خواتین کی کلاس میں کسی نے یہی سوال کیا کہ ان کے کوئی بزرگ رشتہ دار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ ان کے دین کی سمجھ نہیں حاصل ہو سکی اور ان کی اولاد جو ہے وہ بگڑ گئی، تو اب کیا ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا کہ ان کو تو دین کی سمجھ ہی نہیں حاصل ہو سکی؟ تو اس عارض نے ان سے پھر کاؤنٹر سوال کیا کہ عذاب کیوں نہیں ہوگا، یہ بتائیں پہلے. ٹھیک ہے نا، عذاب کیوں نہیں ہوگا یہ پہلے بتائیں. ٹھیک ہے نا، عذاب ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا شکل بری ہوتی ہے اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ کیا رنگ کالا گورا ہوتا ہے اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ یا قد چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ یہ وجہ ہوتی ہے عذاب کی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو لہب کو عذاب دے رہے ہیں، ابو جہل کو عذاب دے رہے ہیں، فرعون کو عذاب دے رہے ہیں، حامان کو عذاب دے رہے ہیں، نمرود کو عذاب دے رہے ہیں کہ ان کی شکل اچھی نہیں تھی، ہے نا، اس وجہ سے. بلکہ کس وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہیں؟ کہ انہوں نے جب علم کے ذرائع موجود تھے ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے علم کا ذریعہ ان کے سامنے رکھا تھا، اسباب رکھے تھے علم حاصل کرنے کے، انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے علم کے سبب سے منہ موڑا، علم کے سبب کا انکار کیا، اسی وجہ سے تو وہ کافر ہوئے، اسی وجہ سے تو ان کو عذاب ہوگا. तो अगर आपके बुजुर्ग रिश्तेदार जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनके सामने असबाब रखे हुए थे, कुरान मजीद के दुनिया में मौजूद नहीं था, बल्कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले थे तो फिर तो घर के अंदर भी मौजूद था। नबी अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के हमारे सामने मौजूद नहीं है, उलमा और मशाइख के हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, तो ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना कि इल्म नहीं हासिल हो सका। भाई आपने इल्म हासिल नहीं किया, ये फर्ज था आपके ऊपर कि आपने इल्म हासिल करना था, इल्म नहीं हासिल किया, तो यही तो वजह बनती है अज़ाब की, ठीक है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात समझ में आ गई, तो फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि फिर अब क्या करना चाहिए हमें, वो तो गुजर गए इस दुनिया से, ठीक है ना। तो सारिस ने उनको फिर समझाया कि देखें आपके दिल में जो ये उनके बारे में ये फिक्र आई है ना, ये अल्लाह की तरफ से आई है, कोई ना कोई इनकी नेकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपके दिल में उनका ख्याल पैदा किया, हालांकि आप उनकी सगी औलाद में से भी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना आप उनके लिए दुआ करें, उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, उनके लिए साले सवाब करें, और उनकी जो सगी औलाद बिगड़ चुकी है उस औलाद के ऊपर मेहनत शुरू करें कि वो जो है वो हिदायत के रास्ते के ऊपर आ जाएं, और वो अपने अपने उस यानी अपने वालिद के लिए अजाबे जारिया का सबब बनने की बजाय सवाबे जारिया का सबब बन जाएं। तो ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज स्टिल नॉट लॉस्ट, ठीक है। तो ये जो इल्म ना हासिल करना है ना, मुंह मोड़ना, यही तो अजाब का सबब बनता है, ठीक है। तो इल्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, अमल की तो बुनियाद ही इल्म के ऊपर होती है। अगर अमल नहीं है, यानी फर्ज के ऊपर अमल करना और जो मुनकरात हैं उनसे बचना, यही तो अमल है, जो करने का अमल है, राइट। अगर इल्म नहीं है तो आप किस बुनियाद पे अमल कर रहे हैं, बस देखा देखी। वैसे देखा देखी भी जो अमल होता है ना, वो भी इल्म ही की वजह से होता है, क्योंकि आप देख करके लोगों से इल्म हासिल कर रहे होते हैं ना कि अच्छे भी फलाने काम को ऐसे करना होता है ना। क्योंकि देखा देखी भी अमल जो है ना, ये भी इसकी भी बुनियाद इल्म ही है, अगरचे कि वो पुख्ता इल्म नहीं है, देखा देखी वाला इल्म है, आपने खुद से हासिल नहीं किया, खुद से उसकी उसके बारे में सवाल नहीं किया, खुद से उसको समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। देखा देखी में काम कर रहे हैं, लेकिन देख करके भी तो इल्म ही हासिल कर रहे हैं ना, लेकिन ये यानी गैर पुख्ता बुनियाद है। तो इल्म तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, बुनियाद तो इल्म ही की के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्का ना समझें, बिल्कुल भी इस तरह से ना समझें कि जी इल्म हासिल करने का क्या फायदा जब अमल ही नहीं करना। भाई अमल उस वक्त करोगे जब इल्म हासिल करोगे, बगैर इल्म के अमल कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद फरमाया फस्तजाब लहू रब्बुहू फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। फस्तजाब लहू, बस अल्लाह ताला ने जवाब दिया यानी पॉजिटिव रिप्लाई किया अपने बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यानी उनकी दुआ उनके रब ने कबूल फरमा ली, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना दुआ की कबूलियत के लिए फस्तजाब लहू या इस्तजाब लहू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं, जवाब देने का जो मानी होता है। फसरफ अनहु, और औरतों के मकरो हीले को उनसे दूर रखा, ठीक है। सरफ यानी फेर दिया, सरफा फेर दिया, कैदहुन्ना उनके कैद को, ठीक है। तो अल्लाह ताला के लिए जो है ना वो ये भी बहुत आसान है कि वो हमें किसी चीज से दूर कर दें, और ये भी बहुत आसान है कि वो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है उसी को हमसे दूर कर दें, ठीक है ना। बजाहिर वो ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि हम तो एक आदमी हैं, एक इंसान हैं, तो हमें फेर देना या हमें उस जगह से हटा देना ज्यादा आसान है ना। यानी आप जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किसी जगह पे जो है वो फंस गए हैं, चारों तरफ आपके जो है ना वो दुश्मन हैं, चारों तरफ जो है वो आपका खून खौर किस्म का माहौल है, ठीक है ना। अब एक आप जो है उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो आपको उसमें से इवैक्यूएट करना ज्यादा आसान काम है। इवन जो फाइटर जेट्स होते हैं तो उनके अंदर इवैक्यूएशन का जो है ना क्या कहते हैं, इजेक्शन, इजेक्शन का बटन होता है पायलट के हाथ में। जब जहाज जो है वो उसको मिसाइल लग चुका होता है, वो क्रैश होने के लिए जा रहा होता है, तो एक बटन दबाया और एकदम से जो है वो पायलट जो है वो इजेक्ट हो जाता है उसके अंदर से, ठीक है ना। कितना आसान सा काम लगता है, जहाज को बचाना बड़ा मुश्किल काम है कि उसकी तो आग लग चुकी है, वो तो अब क्रैश करने के लिए जा रहा है, वो तो नोज डाइव कर रहा है, जहाज को कैसे बचाएं भाई, है ना। तो जहाज को कोई इंसानी ताकत तो नहीं बचा सकती, पायलट को तो फिर टेक्निक जो है वो बचा सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए पायलट को बचाना जितना आसान है ना, उतना ही जहाज को बचाना आसान है, ठीक है ना। यानी इट्स द सेम थिंग, अल्लाह सुब्हान तआला के लिए इज द सेम थिंग। तो पूरे के पूरे माहौल को चेंज कर देना, ये भी अल्लाह ताला के लिए उतना ही आसान है कि जितना कि किसी एक बंदे को उस माहौल में से निकाल करके बचा लेना आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की तो कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ क्या मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको वहां से निकाला, बल्कि उनके कैद को जो है वो इनसे दूर कर दिया, और खुद फरमा रहे हैं फसाहु, ठीक है ना। फिर आगे जो इन्होंने दुआ मांग ली थी, तो वही, वो तो इनका मसला था ना कि इन्होंने ऐसी दुआ क्यों मांगी, ठीक है ना, कि मुझे जो है वो। तो फिर तो अल्लाह ताला ने फरमाया, भैया हम आम आपको ऑक्सीजन में, यानी आपको वहां से इवैक्यूएट किए बगैर भी आपको निजात दे सकते थे, लेकिन आप मकबूल बंदे हैं, दुआ आपने मांग ली है, अब आपको जो है वो वहां से इवैक्यूएट भी करना पड़ा आपकी दुआ की कबूलियत की वजह से, ठीक है। और उसमें फिर अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, कभी इंसान से गलती हो जाती है, जैसे इनसे जो है वो रिवायत की, हदीस की रिवायत के मुताबिक इनसे ये वाली इज्तिहादी गलती होगी, क्योंकि कोई गुनाह कोई थोड़ी था, ठीक है। ये बस लेस प्रेफरेबल जो ऑप्शन था वो इन्होंने इख्तियार कर लिया, ठीक है। तो इंसान से गलती हो जाती है, अंबिया से भी ऐसी वाली इज्तिहादी गलती हो जाती है, लेकिन उसको फिर उसके अंदर फिर अल्लाह ताला की हिकमत भी होती है, अल्लाह ताला उसके जरिए से भी बहुत सारे फायदे उनको पहुंचा देते हैं। तो फिर इनका आगे का वाकया फिर मजीद उसके ऊपर गवाही देता है कि वो भी इनके लिए फिर खैरी का सबब बना, जाहिर है। तो फरमाते हैं कि बेशक वो बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारी मुश्किलात जो है ना वो हमें अनसॉल्वेबल नजर आनी शुरू हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला जो दरवाजा है ना वो तो कभी किसी सूरत बंद नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला से इंसान हर सूरत में रुजू करे। अच्छा, हम जो है ना वो अल्लाह से रुजू करना उसी वक्त हमें कुछ कुछ समझ में आता है जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब असबाब के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब असबाब के दरवाजे खुले होते हैं ना, तो उस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से ध्यान बड़ी तेजी के साथ हट जाता है, बड़ी आसानी से जो है वो उधर से हट करके असबाब के ऊपर ही सारा ध्यान बन जाता है भाई। है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अब क्या जरूरत है ऊपर देखने की, अल्लाह से मांगने की अब क्या जरूरत है। नहीं, उस वक्त अल्लाह ताला से मांगना और भी ज्यादा जरूरी होता है, उस वक्त अल्लाह से रुजू करना और भी ज्यादा जरूरी और भी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो शुक्र का वक्त होता है, और शुक्र भी तो अल्लाह का करना है ना, ठीक है। तो शुक्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, और यही हर वक्त जाने कि ये जो अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हुए हैं, और हर चीज जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रही है, और कोई जो है वो बुरे मामलात नहीं पेश आ रहे हैं, ये सब का सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये सब का सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और मेरी वजह से नहीं है सब कुछ, ये मेरी मेहनतों की वजह से, मेरी अकलमंदी की वजह से, मेरी प्लानिंग की वजह से, मेरी जो है ना वो किस्मत के अच्छे होने की वजह, जो भी उल्टे सीधे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, नहीं, इस वजह से नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से है, ठीक है। तो रुजू इल्लाह जो है ना, ये सब जब असबाब बंद हो जाए उस वक्त भी करना है, और जिस वक्त असबाब अवेलेबल है उस वक्त भी रुजू इल्लाह ही करना है, यही सुन्नत है, यही हमें नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हर वक्त अपने फेल से, अपनी कॉल से सिखा करके गए हैं इस दुनिया से। अल्लाह ताला ने इन औरतों के जाल से बचाने के लिए ये सामान फरमा दिया कि अजीज मिस्र और उसके दोस्तों को अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी और तकवा व तहारत की खुली निशानियां देखकर उनकी पाकी का यकीन हो चुका था, मगर शहर में इस वाकई का चर्चा होने लगा। उसको खत्म करने के लिए उनको मसलहत इसमें नजर आई कि कुछ अरसे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि अपने घर में इन शुबहात का कोई मौका भी बाकी ना रहे, ठीक है ना। जिसको उर्दू जुबान के अंदर मुहावरा कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। तो बांसुरी की आवाज आ रही है, तो अब बजाय इसके कि आप बांस को जो है ना वो छीन करके नीचे रख दें बजाने वाले से, आप बांस को तोड़ करके जो है वो गायब ही कर दें, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब वो कैसे बांसुरी बजाएगा जब बांस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो शुबहात का कोई मौका भी बाकी ना रहे, और लोगों की जुबानों से इसका चर्चा भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हमें सबक मिलता है कि जो शुभ पैदा करने वाली चीज है ना, लोगों के दिलों में डाउट पैदा करने वाली चीज है, अगर मुमकिन है तो उसको भी उसको खत्म कर दो, डाउट पैदा करने वाली चीज को, ठीक है ना, यानी एहतमाल रखो ही नहीं। तो इसके अंदर जो है ना वो फिर शरीयत और हमारे जो फुकहा हैं जिन्होंने शरीयत को समझ करके फिर हमें समझाया है, उन्होंने फिर बात को आसान किया कि भाई एक तो होता है ना बिल्कुल 100% कोई ऐसा सबब है जो कि 100% नुकसान तक पहुंचाने वाला है, ठीक है, तो उसको तो शरीयत ने हराम करार दे दिया, हराम, ठीक है, कि भाई ये तो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम है, और इसका तो कोई यानी परमिसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन दैट्स नॉट इट, बल्कि इसके बाद फिर ऐसे असबाब होते हैं जो कि 100% पहुंचाने वाले नहीं है नुकसान के ऊपर, बल्कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि वो 50% चांस है कि वो गुनाह तक पहुंचा देंगे, या 60% चांस है कि वो, ये तो स्टैटिस्टिक्स की जुबान में हम 60-50 कर रहे हैं, लेकिन शरीयत की जुबान में इसको कहते हैं असबाबे करीबा, असबाबे करीबा, ठीक है, कि करीब करीब पॉसिबिलिटी है कि वो गुनाह तक पहुंचा देंगे। तो शरीयत ने यानी हदीसे मुबारका ने या फुकहाए उम्मत ने उन असबाब को जो कि करीब करीब पहुंचा देने वाले होते हैं गुनाह की तरफ, उनको मकरूह करार दिया, ठीक है ना। अब मकरूह के अंदर भी जो है वो मजीद यानी सपोजिटली 80% पॉसिबिलिटी है तो उसको मकरूह तहरीमी करार दे दिया, और कोई चीज जो है वो 60% पॉसिबिलिटी है तो उसको मकरूह तंजीही करार दे दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे भी असबाब होते हैं कि जिनको देख करके जो है ना वो यानी मुमकिन है कि वो गुनाह तक पहुंचा दें, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो गुनाह तक ना पहुंचाएं, दोनों बराबर बराबर हैं, या ना पहुंचाने की पॉसिबिलिटी 50% से भी कम है पॉसिबिलिटी, लेकिन 50% से भी कम है पॉसिबिलिटी। तो ऐसे जो असबाब होते हैं ना गुनाह तक पहुंचाने वाले, तो उनको फिर असबाब बईदा करार दिया कि फार फेच पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये भी गुनाह तक पहुंचा दें, असबाब बईदा, ठीक है। तो असबाब बईदा जो है ना, ये जाहिर है इनकी इनकी तादाद भी और इनका इनका जो स्कोप है ना ये बहुत ज्यादा होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि जो कि गुनाह तक पॉसिबली पहुंचा सके, लेकिन वो पॉसिबिलिटी इतनी ग्रेट नहीं है, तो उनको फिर शरीयत में मुबाह करार दिया, परमिसिबल, ठीक है ना, क्योंकि अगर उनको भी बंद कर दें, उनके ऊपर भी जो है वो मकरूह तहरीमी या इवन मकरूह तंजीही और जो है वो हराम का किस्म की कोई चीज अगर लगा दें, उसके ऊपर हुक्म लगा दें, तो फिर हरज हो जाएगा, हरज यानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, और शरीयत का उसूल किया है ला हरज फिर दीन, दीन के अंदर हरज नहीं है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम किस्म की डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है तो चलो तो जी ना ला हरज फिर दीन, है ना, सुबह को मेरी नींद खराब होती है, मेरे दफ्तर जो है मुतासर होता है, तो ला हरजा फिद दीन, फजर की नमाज गोल कर गए, पर्दा करने के अंदर होता है जी फलाने नाराज हो जाते हैं और फलानी, ला हरजा फिद दीन पर्दा छोड़ दो भाई, ये फर्ज है, ये मकरूह तंजीही या इवन मकरूह तहरीमी वाला मामला, ये फर्ज है तो पर्दा नहीं छोड़ सकते ला हरजा फिद दीन की वजह से, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि लेवल तक नहीं होती हैं, तो इस वजह से ना शुभों का भी मामला ऐसे ही है कि जो चीजें जो है वो एक यानी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ शुभों क्रिएट करने वाली हो, उनको आप एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक इंसानी साइकोलॉजी कम्स इनटू प्ले, कि जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको उर्दू में ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, कुछ जो चीज आंख से ओझल हो जाती है ना इंसानों की, तो इंसान जो है वो निस्यान का यानी मजमुआ है, निस्यान यानी भूल, तो जो चीज उसके सामने से हट जाती है ना वो जल्द उसको भूल जाता है, ठीक है। खामोशी अख्तियार करना भी इसी की एक शक्ल होती है कि भाई आप अगर बोलते रहेंगे तो चीज इवन अगर आंखों से ओझल हो भी गई ना, लेकिन अगर आपने उसके बारे में बोलना नहीं खत्म किया, उसको डिस्कस करना, उसको मेंशन करना खत्म नहीं किया, तो भी इट्स एज गुड एज बीइंग प्रेजेंट। जैसे मिसाल के तौर पर ये आजिज बहुत पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका है कि आजकल तो फतवे भी आ गए और सब कुछ ही आ गया तस्वीरों के ऊपर, ठीक है ना, कि तस्वीरें जो है ना वो डिजिटल फोटोज अलाउड हैं, तो फलानी फोटोज अलाउड हैं, तो फलानी फोटोज अलाउड हैं, ठीक है भाई फतवे आ गए, हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते अगर मतलब अहले हक ने फतवा दिया है, ठीक है ना। लेकिन अकल भी तो एक नाम की चीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है भी ला हरजा फिद दीन वाला आप इस्तेमाल करें जहां पे वो अप्लाई होता है, लेकिन जो अपनी फैमिली फोटोज रखी हुई हैं, अपने बच्चों की फोटोज रखी हुई हैं ना, हर ओकेजन के ऊपर फोटो रखते हैं उसको जो है वो अपने रिकॉर्ड के अंदर सेव करके रखते हैं, ठीक है ना, आपको क्या पता कि कब आपका बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, आपको क्या पता कि कब आपका कोई बिलवड जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। आज आज किसी ने खबर भेजी, ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं ना दुनिया के अंदर, कैसे कैसी चीजें होती हैं। फेडरल बी एरिया कराची के ब्लॉक 10 के अंदर एक 15 साल बच्चा, बच्चे है ना 15 साल का हो, क्या होता है, उसने जो है वो अपने 7 साल मामूजात कजन को छुरी से जबा कर दिया है ना, घर के अंदर किचन से छुरी उठाई, फ्रूट काटने वाली छुरी, वो अपनी जेब के अंदर, यानी इतनी छोटी छुरी होगी कि जेब के अंदर आराम से उसकी आ गई, और वो अपने कजन को लेकर के गया किसी पार्क वगैरह के अंदर और छुप करके जो है ना उसका गला काट दिया। क्यों काटा भाई? क्योंकि वो उसकी शिकायत लगाता था और मामू जो है वो उसको डांटते थे शिकायत लगाने के ऊपर। तरीका कैसे सीखा? इंडियन फिल्में देखी थी, कोई लेटेस्ट कोई फिल्म आई हुई थी उसके अंदर जो विलेन था या पता नहीं हीरो था जो भी था, वो जो है ना वो इस तरीके से लोगों को कत्ल किया करता था, तो उसको देख करके इसने तरीका सीखा और उस तरीके को जा करके अपने कजन के ऊपर अप्लाई किया। गुस्सा आ गया था इसको कि उसने मेरी शिकायत क्यों लगाई, मामू ने मुझे डांटा क्यों, और तरीका जो है फिर फिल्मों ने सिखा दिया, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी, उससे क्या फर्क पड़ता है। इंडियन फिल्मों की खाली यही एक बुराई है कि उसमें कत्ल का तरीका सिखाया जाता है, अमेरिकन फिल्मों में नहीं सिखाया जाता, वीडियो गेम्स के अंदर नहीं सिखाया जाता, पाकिस्तानी फिल्में जो है उन सारी चीजों से पाक हैं क्या, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हो रही हैं। तो बहरहाल बात पता नहीं मैं क्या कर रहा था, असबाब, तो आप खामोशी इख्तियार नहीं कर रहे, तो उन चीजों को यानी आपको उनको यानी फिर फायदा नहीं है। आपने आंख से ओझल कर दिया, जैसे आजकल जो है वो जेल में डाल देते हैं, ठीक है ना, तो जेल में डाल दिया, आंख से ओझल कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया और सारे के सारे एनालिस्ट और सारे के सारी बाकी चीजें जो है वो खूब जो है वो लगी हुई हैं, लगी हुई हैं, लगी हुई हैं चर्चे के ऊपर, और मुखालिफिन जो है ना वो लगे हुए हैं अपने आप को और बुरा प्रूफ करने के ऊपर। तो फिर ऐसा आंख ओझल जो है ना फिर हीरो बन करके निकलता है, कामयाब बन करके निकलता है ना, दुनिया वाले जो है वो जैसे सोशल मीडिया तो पूरा दज्जाल का बड़ा हथियार, तो मुझे तो लगता है ये सोशल मीडिया इसी काम होता है ना, दज्जाल फॉरवर्ड काम तो नहीं करने होते, दज्जाली नाम के अंदर क्या तरीका है किसी को अच्छा बनाने का, किसी को ऊंचा बनाने का, ऊंचा चढ़ाने का, वो अपने ब्लंडर्स कर करके जो है वो खुद नीचे गिर रहा होता है, हर बंदा ही नीचे गिर रहा है ब्लंडर्स कर करके, तो अब आपको जो है ना ऐसे ब्लंडर्स करने वाले को चढ़ाना है, तो उसका तरीका क्या है, उसको तो आप अकल सिखा नहीं सकते, वो तो सुनने के लिए सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चढ़ाने वाले फिर भी मुसिर है कि उसको किसी तरह ऊंचा चढ़ाए। तो उसका तरीका आजकल ये होता है कि जो उसके मुखालफिन है ना तो उनको मजीद गंदा बनाओ और उनसे मजीद इसकी मुखालफत करवाओ और उनको मजीद गंदा बनाओ, वो पहले ही जो है वो भी गिर रहे हैं है ना, उठना आसान, उठना मुश्किल काम होता है ना, गिरना तो इतना आसान काम होता है, तो गिरने वालों को गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये तो हमारा पुराना मुहावरा है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो जो पहले ही गिर रहे हैं उनको धक्का दो, खुद ब खुद जो है ना वो ऊपर, ठीक है ना, ये भी तो एक तरीका है ना ऊपर जाने का, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उसको नीचे कर दो, तो आप खुद ब खुद बजाय बगैर ऊपर गए हुए आप ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो दज्जालियात के अंदर तो फिर ये सारी चीजें शामिल हैं, मसीहुद्दज्जाल, दज्जाल कौन होगा, मसीहा है ना, जो कि मुश्किलात से निजात दिलाने वाला बन करके आएगा, और जो है वो, और जो है वो जो 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 दुनिया के अंदर मुसीबत की शक्लें होंगी उन मुसीबत की शक्लों का इलाज करने का है ना मसाया बन करके आएगा, ये है दज्जाल, धोखा भी और मसाया भी, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा फितना नहीं है, ये शैतान का सबसे बड़ा हरबा है जो इस दुनिया के अंदर शैतान इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और इस फितने से हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। थोड़ा सा मुराकबा करें इस वाले जुमले के ऊपर, हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। मतलब क्या है इसका, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहरहाल तो शुभहात का मौका ही खत्म कर दें, लोगों की जुबानी से इसका ये चर्चा ही खत्म हो जाए। फिर उसके बाद फरमाया, थुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा रअउल आयाति लयसजुनन्नहू हत्ता हीन, के उनके ऊपर जो है ना वो जाहिर हो गया। बदा लहुम का तर्जुमा बनता है कि जी इट बिकेम अपेरेंट अपॉन देम, इट बिकेम ऑब्वियस टू देम, उनके ऊपर जाहिर हो गई ये बात। मिम बादी, इसके बाद मा रअउल आयाति, कि जो इन लोगों ने आयात को देखा, कि यानी जो इन्होंने निशानियां वगैरह देखी ना, कि भाई ये सब कुछ चल रहा है, औरतें जो है वो बातें करना शुरू हो गई हैं और टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, तो लयस जुनून न हत्ता ही, तो उन्होंने सोचा यानी इसी के ऊपर अजीज और उसके मुशीरों ने मसलियत इसी में समझी कि कुछ अरसे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखा जाए, चुनाचे जेल खाने में भेज दिए गए। ठीक है, तो ये इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसलियत थी जिस वक्त फितने दज्जाल दुनिया में नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आंख ओझल हो गए तो पहाड़ ओझल भी हो गए। सही है, अब अंदर के वाकयात चल रहे हैं, वो अल्लाह ताला का अंदर का, अंदर अल्लाह ताला जिस तरह सिजन के बाहर के मामलात के ऊपर गालिब हैं, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, तो अल्लाह का अमर जो है वो सिर्फ सिजन के बाहर की थोड़ी होता है, कैद खाने के बाहर की थोड़ी है, कैद खाने के अंदर भी तो अल्लाह ताला का निजाम चल रहा है ना। तो अंदर क्या निजाम चल रहा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बारे में हमें बताते हुए, व दखला माहु सिजना फतयान, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि अभी हम इसकी तलावत शुरू कर रहे हैं, और दाखिल हुए उनके साथ सिजन में फतयान, दो नौजवान। ठीक है, काला अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ने कहा, इन्नी अरानी असिरु खमरा, कि बेशक मैं देखता हूं कि मैं निचोड़ रहा हूं खमर को, यानी मैं खमर जो है वो अंगूर से बनती है। ठीक है, जो प्योर ओरिजिनल वाइन होती है वो अंगूर से बनती है, तो मैं यानी सड़े हुए अंगूरों को निचोड़ रहा हूं, आसिरु खमरा, और उससे जो है वो खमर यानी कि इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेट करने वाला जो लिक्विड है उसके अंदर से निकल रहा है। खमर क्या होता है, यानी शराब के लिए खमर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेट कर देता है इंसान को, उसके हवास को जो है ना वो खराब कर देता है। जिस चीज के अंदर भी इस चीज की सलाहियत है हवास खराब कर देने की, तो वो फिर इस डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि इल्लत जो है वो खमर है। ठीक है, वकाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौक रासी खुबजन ताकुलु तैरु मिन्हु, और दूसरे ने आखर, आखर जब खा के ऊपर फतहा के साथ होता है, जबर के साथ, तो इसका मतलब होता है द अदर वन, आखिर, द लास्ट वन, ठीक है, आखिरी। तो दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी, बेशक मैं देखता हूं, अहमिलु फौक रासी, कि मैं उठाया हुआ हूं अपने सर के ऊपर खुबजन, रोटी, रोटी को, ताकुलु तैरु मिन्हु, और परिंदे जो है ना अत्तैर उसमें से खाते हैं। ठीक है ना, यानी ऊपर से आकर के परिंदे मेरे सर के ऊपर बैठ रहे हैं और उसमें से खा रहे हैं, यानी खुब्ज को खा रहे हैं। नब्बे ना बेतावीर ही, ठीक है ना, आप हमें बता दीजिए, हमारे ऊपर खोल दीजिए इन इसकी तावील, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन। तावील जैसे कि हम अपने उलमा के लिए, मशाइख के लिए तावील देते हैं कि भाई उन्होंने जो फलाना काम किया था हमें बज़ाहिर सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी तावील ये है कि ये सही है, हमारे इल्म में नहीं था, या हम समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो तावील करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को। इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देखते हैं तुझको एहसान करने वालों में से, यानी नेकी करने वाला, पाकबाज रहने वाला। ठीक है, मुहसिन, हम आपको मोहसिनीन में से देखते हैं, यानी यू आर वन ऑफ द गुड डूअर्स। काला ला यातीकुमा ताअमुन, यानी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं आ पाएगा तुम्हारे पास खाना, यानी अब जो है ना वो खाने का वक्त होने वाला था जब प्रिजन के अंदर खाना वगैरह पहुंचाया जाता है कैदियों को, तो तुम्हारे पास खाना नहीं आ पाएगा, तुरज़कानी ही, जो तुमको रोजाना दिया जाता है। ठीक है, यानी ये मजहूल का सीगा, पैसिव टेंस में, जिसको जो तुम्हें दिया जाता है खाना, रिस्क के तौर पर दिया जाता है, तुम्हारी सस्टेनेंस के तौर पर तुम्हें जो खाना दिया जाता है ना, वो तुम्हारे पास अभी नहीं पहुंच पाएगा, इल्ला नब्बातु कुमा बिताबीली, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें बता दूंगा इनकी तावील, उसकी तावील, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर तावील बता दूंगा से मुराद जो है वो जो 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 मुफस्सरीन ने बयान करी, वो ख्वाबों की तावील नहीं है कि मैं तुम्हें, तुमने जो दो ख्वाब बताए ना, मैं तुम्हें उनकी तावील बता दूंगा, बल्कि खाने की तावील बता दूंगा, ठीक है, कि खाना क्या है वो मैं तुम्हारे सामने खोल के बता दूंगा कि क्या खाना आने वाला है। इससे क्या कर रहे थे, इससे जो है ना वो इन लोगों के की नजर में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कॉन्फिडेंस बिल्ड, क्योंकि असल में जो है ना वो इनके दिल में कुछ और था, दावत और तबलीग का काम था। नबी थे ना अल्लाह के, और हम जो है वो नबियों के उम्मती हैं, तो हमारा भी तो यही काम है, दावत और तबलीग का काम, ठीक है। तो फौरन जो है वो अपने दावत और तबलीग के काम के लिए पिच बनाना शुरू हो गए, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट के शौकीन जो होते हैं ना, वो पिच बनाते हैं पहले, ठीक है ना, तो ये पिच बनाना शुरू हो गए ताकि अच्छी सी बॉलिंग कर सकें, अच्छा से जो है ना वो आगे जो ये खड़े हुए हैं उनके ऊपर उनके कुफर के विकटों को गिरा सकें। अल्लाह ताला हमें इस मनहूस गेम से तौबा की तौफीक अता फरमाए। पता नहीं क्या मुंह दिखाएंगे जो PSL, अब जो लोगों ने बताया कि ये PSL शुरू हो रहा है, तो PSL में जो खेलेंगे, जो PSL को के अंदर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और जो PSL को वॉच करेंगे, जो देखेंगे, जो फॉलो करेंगे, और जो अपने ताम खानों के अंदर बैठ करके उसके बारे में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे, हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या जुल्म, कितनी बर्बरियत जो है वो खोल खोल करके दुश्मन हमें दिखा रहा है, जिसने इंटरनेट को जारी रखा हुआ है और वीडियोस बना बना करके हमारे घरों तक पहुंचा रहा है, हमारे सेलफोन्स तक पहुंचा रहा है, कि तुम्हारे बच्चे कैसे जो है वो मर रहे हैं, कैसे उनकी खालें जो है वो उधड़ रही हैं, कैसे जो है वो बेबस हो तुम लोग कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। इस हालत में जो है वो हम क्रिकेट का मैच जो है वो, यानी इस ढोल तमाशे के साथ खेलेंगे भी और देखेंगे भी, और फिर उसके ऊपर एक एक अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि KFC को भी उन्होंने जो है वो अपना स्पॉन्सर बना लिया। शायद कुछ लोगों को इसी बहाने जो है वो अकल आ जाए कि KFC का तो जो है वो बायकॉट करना था, बायकॉट, बॉयकॉट तो नहीं करना था, बायकॉट करना था, तो वो भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। यानी गोया के अगर थोड़ी बहुत कुछ हुज्जत रह जाती, अगर थोड़ी बहुत हुज्जत रह जाती है ना, वो भी पूरी हो गई, ठीक है ना, कि जी इन बदबख्तों ने तो जो है वो हमारे मुंह के ऊपर एक और थप्पड़ मार करके, क्योंकि सारे एक ही हैं, सारा कच्चा छट्टा एक है, ये कोई अलग अलग नहीं है कि ये PSL वाले अलग हैं और उधर जो उधर मारने में कोई अलग लोग हैं, सारे मिले हुए हैं, सारे एक ही हैं असल में ये। तो इन इन बदबख्तों ने जो है ना वो आखिरी कील हमारे कॉफिन के अंदर KFC के जरिए से ठोक दी कि अगर अभी भी तुम तौबा नहीं करोगे ना, तो तुम फिर जहन्नुम रसीद हुए बगैर तुम्हारे तुम्हारे लिए आगे कोई रास्ता नहीं है, दुनिया की भी जहन्नुम कमाओगे तुम और आखिरत की भी जहन्नुम कमाओगे। बात समझ में आई, कहना क्या चाह रहा हूं, आखिरी की नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या है यहाँ पर। सारी हुज्जतें पूरी कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ऊपर बैठ करके ये काम करवा रहे हैं इनसे, लेकिन किनसे करवा रहे हैं, या जमीन के शैतानों से करवा रहे हैं, और हम कौन है, हम जो है वो उनके हाथों जो है ना वो पिंग पोंग की बॉल बने हुए। अकल समझ बसीरत बसारत कान समाअत सारी चीजें जो है ना वो बंद करके, और अपनी अकल को जो है वो मिट्टी पाओ, मिट्टी डाल करके अकल के ऊपर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और ये तो दीनदारों से हम शिकवा करते हैं, दुनियादारों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो सिर्फ दीनदारों से बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग माशाल्लाह, ठीक है ना। तो फरमाते हैं कि कबल अन यातियकुमा, तो इससे पहले कि तुम्हारे पास जो है ना ये खाना आ जाए, तो मैं उसकी तुम्हें तावील बता दूंगा, कबल अन यातियकुमा, इससे पहले कि वो तुम्हारे पास आ जाए। अच्छा, जालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, ये उससे है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, अल्लमनी मुझे सिखाया है रब्बी, मेरे रब ने, यानी मैंने कोई फाल नहीं निकाली, कोई जो है ना वो जादू नहीं किया, कोई जो है वो जिन्नात के साथ रابطہ नहीं किया, कोई जो है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करी, कोई मैंने दुनियावी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए, ये वही है जो कि मेरे रब मुझे बराह रास्त भेजता है। इन्नी तरक तो मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, बेशक मैंने छोड़ दिया मिल्लत कौमिन कौम की, यानी क्या कहते हैं, यानी यानी दीन का जो लफ्ज है यहां पर महजूफ है कि मिल्लत कौमिन ही, यानी क्योंकि मिल्लत का मतलब ये होता है कि जो कि एक दीन के ऊपर हो, ठीक है, तो मैंने कौम की जो दीन है ना, इसके तर्जुमा कैसे किया था शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कि कौम का दीन, मिल्लत कौम, कौम का दीन छोड़ दिया, किस कौम का दीन छोड़ दिया, जो ला युमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, वहम बिल आखिरत हम काफिरून, और जो के आखिरत का इनकार करने वालों में से हैं, मैंने उनका दीन छोड़ दिया, यानी अपना काम शुरू कर दिया, अपना असल काम किया था खाना खाना नहीं, गप्पे लगाना नहीं, इधर उधर की बातें करना नहीं, बल्कि दावत व तबलीग करना, दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। इन्नी तरक तो मिलता यो मिल लाओ मुना बिल्लाह हम बिल आखिरती हम काफिरून व तबा तो मिलता आबाई, ठीक है, खाली ये भी बता करके बात खत्म नहीं कर दी कि मैंने तो छोड़ दिया, बल्कि आगे भी बता रहे हैं कि क्या किया फिर मैंने छोड़ करके, व तबा तो, और मैंने इतबा करी मिल्लत आबाई इब्राहिम व इसहाक व याकूबा, अपने आबा यानी अपने आबाओ अजदाद इब्राहिम व इसहाक और याकूब, इनकी मिल्लत यानी इनका दीन जो है वो मैंने इख्तियार कर लिया, उसकी इत्तबा शुरू कर दी। मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, हमारा ये काम नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज को शरीक ठहराएं, मिन शै कोई भी चीज अल्लाह ताला के साथ हम शरीक ठहराएं, ये दिस इज नॉट बिकमिंग ऑफ अस, दिस इज नॉट, इट डज नॉट बिहूव अस, है ना, इट डज नॉट, यानी ये हमारे ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि हम अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करें। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह ताला का फजल है हमारे ऊपर, वो अलन नासी वलाकिन अक्सर नासी ला यशकुरून, हमारे ऊपर अल्लाह ताला का फजल है और सब लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का फजल है, क्या फजल है कि ये जो दीन है ना, असल दीन इस्लाम का दीन, जो कि इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने इंसानों को पहुंचाया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है सारे इंसानों के ऊपर, ठीक है, और हम जो कि हमें वास्ता बनाए हैं अल्लाह ताला ने, तो हमें यानी अपने आप को जो है वो इसमें से यानी खास करके पहले बयान किया और फिर जो है वो बाकी इंसानों का जिक्र किया, क्योंकि जो सबब बनता है ना उसको सबसे ज्यादा मिलता है, उसको सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, जैसे कि आप जब अपनी जकात किसी को बांटते हैं तो वो कितनी बांटते हैं, 2.5 रुपए 100 में से, अपने पास कितना रखते हैं, 97.5, ठीक है ना, तो अल्लाह ने आपको सबब बनाया अपने गरीब बंदों तक 2.5 रुपए पहुंचाने के लिए, आपको कितना दिया, 97.5 रुपीज दिए या जो भी, ठीक है, तो सबब जो बनता है उसको कितना ज्यादा मिलता है, आप सोच लें, ये तो दुनियावी रिस्क की बात है, दुनियावी डॉलर करेंसी और जो है वो सोने चांदी की बात है, जो रूहानी रिस्क का सबब बनता है तो उसको जो 97.5% वाला ही अगर हिसाब किताब है, वैसे तो उसका हिसाब हमें पता ही नहीं है, लेकिन इतना तो अकल में बात आती है ना कि या तो कम अज कम 97.5% होगा या उससे ज्यादा होगा, तो रूहानी सबब बनने वाले को कितना मिलता है, कितना मिलता है जो वो आगे पहुंचाने का सबब बन रहा होता है किसी के लिए, तो क्या इतनी ख्वाहिश नहीं है हमारे अंदर कि अल्लाह ताला हमें इस सबब के लिए कबूल कर ले, इतनी कम अज कम दिल की तमन्ना तो होनी चाहिए ना, और अल्लाह ताला से मांगना तो चाहिए ना कम अज कम कि अल्लाह आप मुझे इस्तेमाल फरमा लीजिए और कबूल भी फरमा लीजिए, ये वैसा इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम फासिक से भी ले लेता है, नहीं इसकी इसकी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि अल्लाह आप मुझे फासिक, बेशक फासिक के तौर पर ही कबूल फरमा लें, मैं उसको भी अपनी सआदत समझूंगा, नहीं भाई, फासिक के लिए दुआ नहीं मांगे कि मैं फासिक बन करके कबूल हो जाऊं, नहीं, बल्कि मुझे जो है ना वो मेरे इस नेकी को कबूल भी फरमा लें, यानी मुझे सालेह बना दें। अभी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ना वो मैसेज, ठीक है, कि मुझे मुसलह के तौर पे कबूल कर लें लेकिन सालेह बना करके, सालेह बना करके मुसलह के तौर पे कबूल कर लें, फासिक बना करके मुसलह के तौर पे कबूल ना कर लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। तो क्या जाता है इस तमन्ना के को रखने में, क्या जाता है, कितने पैसे लगेंगे आपके, एक खोटी पाई भी नहीं लगेगी, ये तो दिल की तमन्ना की बात है। अल्लाह ताला से मांगे, ए अल्लाह इसके लिए जिन असबाब की जरूरत होती है, जिन सलाहियतों की जरूरत होती है, जिस इल्म की जरूरत होती है, जिस चीज की भी जरूरत होती है, ए अल्लाह आपके खजानों के अंदर कोई कमी है उसकी, है ना, आप मुझे कबूल कर लीजिए, आप ही अपने खजानों से मुझे वो असबाब भी अता फरमा दीजिए, राइट। अपने आप को पेश करें अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश करना ये असल चीज है, ठीक है। तो फिर जो है वो जितना आपके दिल की जो है वो चाहत होगी, जितने आपके दिल के अंदर इखलास होगा, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, प्रिसिशन अकाउंटिंग अल्लाह ताला क्या है ना। अपने मशाइख के साथ तो हम फिर डंडियां मारते हैं ना, जो अपने खिलाफ वाली बात होती है उसको डाउन प्ले करते हैं, और जो अपने हक की बात होती है उसको जो है वो एग्जैजरेट करके, अल्लाह ताला के सामने को थोड़ी कर सकते हैं ये। कल जो है वो आप में से माशाल्लाह एक भाई से बात हो रही थी, तो वो दवाई नहीं खाना चाहते थे, है ना, तो उन्होंने साजिश से कहा जी वो डॉक्टर साहब ने इतनी हैवी डोज की दवाई लिख दी है 1000 मिलीग्राम की, है ना, फौरन बेगम साहब ने टोटा, नहीं 1000 मिलीग्राम की नहीं है, 750 मिलीग्राम्स की है। तो ये भाई ये अल्लाह ताला के सामने तो ये सब नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, कि भाई जो चीज नहीं खानी है तो उसको जो है वो बड़ा बयान करके, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं ना। अगर हम अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक बनना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल खरा बनना, बिल्कुल प्योर बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला खोट पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला खोट पसंद नहीं करते, ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो तमन्ना रखें कि अल्लाह आप मुझे कबूल कर लें, लेकिन इस तमन्ना के लिए दिल को अल्लाह ताला के सामने ऐसा बना के पेश करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला खुश हो जाए आपके दिल को देख करके, और वो आपके हक में और आपके आल औलाद के हक में फैसले फरमा दें, ठीक है ना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि बस एक जनरेशन तक ये चलेगा, भाई अभी हम देख रहे हैं ना, इब्राहिम व इसहा व याकूब व यूसुफ सारे के सारे कबूल है, 4 जनरेशन कम अज कम, और फिर इनके आगे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे भी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला नस्लों नस्लों के अंदर इस फैज को पहुंचाएंगे, क्या मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें कि बस ज्यादा से ज्यादा हमने देखा कि एक ही जनरेशन तक बस होता है, या 2 जनरेशन, ज्यादातर 2 जनरेशन तक होता है, उसके आगे नहीं होता, नहीं भाई, ऐसा आपने देखा होगा 1-2 जनरेशन का, भाई दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों इंसान है, आपको क्या सबका पता है कि अल्लाह ताला ने कैसे पूरी नस्लों को कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला के साथ तो भाई पूरा गुमान करें, बेहतरीन गुमान करें, अल्लाह ताला मेरी पूरी नस्लों को कबूल कर लें इस काम के लिए, ठीक है जी। मा कान लना लना अन نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نا وہ شکر نہیں کرتے اس فضل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت کے اسباب عطا فرما دیے، اور پلیٹ یعنی پکا کر کے پلیٹ ہمارے سامنے رکھ دی، اب صرف ہمارا کام تھا کھانا، ہے نا، لیکن ہم کھاتے بھی نہیں، ہم منہ موڑ لیتے ہیں، हम बिल्कुल नो लिफ्ट करा देते हैं इन सारी चीजों को, इसी को कहते हैं ला यशकुरु, ठीक है। हमारा परवरदिगार क्या हौसला है, हमारे परवरदिगार का, राइट, कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के, सब कुछ कर दिया फिर ये बंदे मुतवज्जे नहीं होते, फिर ये बंदे जो है वो शुक्र अदा नहीं करते, है ना। घर के अंदर एक माँ होती है, वो खूब अच्छा सा खाना बनाए, खूब दिल से जो है ना वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डिश बनाए, और अपने महबूब बच्चों के सामने उस डिश को रख दे, और बच्चे जो है वो थू करके जो है वो साइड पे निकल जाए, नहीं 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 खाना नहीं खाना नहीं खाना। माएं भी मौजूद होंगी ना इस क्लास के अंदर, राइट, तो वो अपने दिल से पूछ करके बताएं कि उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उस वक्त अपने आंसुओं को काबू करना उस माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे परवरदिगार ने सिर्फ एक खाना बना करके नहीं हमारे सामने रखा, रोज खिलाता है और डट के खिलाता है, और खिलाना तो दुनिया की चीज है, आखिरत के लिए सारे के सारे खजाने हमारे सामने रखे हुए, अपना कलाम हमारे सामने ला के रख दिया, कलाम को समझाने वाले हमारे सामने ला के रख दिए, क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। अल्लाह ताला में शुक्र की तौफीक, वादे वाखर दावाना, अल्हम्दुलिल्लाह।